कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर व्यर्थ न जाए जीवन अपना व्यर्थ न जाए जीवन अपना पल पल को आबाद सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर।
ओम शांति। डॉक्टर सविता दीदी, व्यर्थ से खुद भी मुक्त रहते हैं और हम सबको भी जो छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट चला जाता है, शक्तियां वेस्ट चली जाती है और फिर साइलेंस में बैठकर अंतर्मुखता में आकर कभी समय निकाल कर देखने की भी कोशिश नहीं करते। आज बाबा ने आते ही कहा था ना, मैं अपने पावन बच्चों को देख रहा हूँ और उनका पोता मेल भी देख रहा हूँ। तो बाबा को पोता मेल दिखाने से पहले हम स्वयं अपना पोता मेल देखते रहें कि कितना हम व्यर्थ से मुक्त रहे और अंतर्मुखता की शक्ति से किस तरह से अपने जीवन को, श्वासों को, समय को सफल किया। डॉक्टर सविता बहन, आप अपनी किशोर अवस्था से ही बाबा को समझ गए, पहचान गए और सबको पहचान देने में जुट गए। आपने उदयपुर से MBBS की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद आपका इतना अच्छा भाग्य चमका, सीधा बाबा के घर आए मधुबन में और यहाँ धीरे धीरे दादी की सेवा में जुट गए। पहले कुछ टाइम ग्लोबल हॉस्पिटल में आपने सेवाएं दी और फिर दादी के आप पर्सनल फिजिशियन रहे, अंग संग रहे, बहुत कुछ उनसे उनमें देखा सीखा और इतनी महान आत्मा की सेवा करने का, उनसे निरंतर दुआएं लेने का आपको चांस मिला। बहुत शांत और शीतल पर्सनैलिटी की स्वामी हैं आप। तो आदरणीय सविता बहन जी, आपकी लीडर का नाम भी सविता बहन जी, इनका नाम भी सविता बहन, तो इसीलिए इनसे हम सुनेंगे किस तरह से कहीं भी कुछ भी वेस्ट ना जाए और हमें लगने लगे कि हमारा एक एक पल, एक एक श्वास बाबा के कार्य में, बाबा के स्थापना के कार्य में सफल हो रहा हो। ये नहीं होता सुबह से लगते हैं, सहन भी करते हैं, शांत भी रहते हैं, मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, लगता है स्वर्ग की ना एक महल की दीवार खड़ी कर दी, बड़े खुश होते हैं। शाम को बच्चों पर गुस्सा आया, थोड़ी सी टेंशन हुई, किसी का फोन आ गया, घर में कोई प्रॉब्लम की बात छेड़ दी, चलो जी जो सुबह से दीवार खड़ी की थी वो ढा दी सारी। तो ऐसा ना हो, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो, डिस्ट्रक्शन ना हो, तो इसकी आप युक्तियां बताएंगे सविता।
ओम शांति। ओम शांति बोलते ही शांति की स्थिति में हम स्वयं को स्थित कर सकते हैं। दादी तीन बार ओम शांति बुलवाती है ना, तो मैं शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ और शांति के सागर की संतान हूँ। तो हम कहीं भी रहते, कितनी भी आवाजों में हो, कितने भी अशांत वातावरण में हो, शांति का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें वो विधि सिखा दी कि शांत मन कैसे हो सकता है। दुनिया में लोग शांति ढूंढते हैं, शांति ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, कहीं जंगल में जाएंगे यानी पहाड़ों पर जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, गुरु के पास जाएंगे, तीर्थ स्थान पर जाएंगे, बाहर से शांति मिल जाए वो कोशिश करते हैं। लेकिन बाहर से भी शांति कब मिल सकती है? जब मन शांत होता है। मन अशांत है तो बाहर कितना भी शांति का वातावरण है वो भी मेरे मन को शांत नहीं कर पाता है। तो इसीलिए कहा कि शांति तो मन की स्थिति है। शांति की शक्ति बाबा हमें कहता है सर्वश्रेष्ठ शक्ति है, और हमारी मनसा सेवा का आधार भी साइलेंस पावर है। हम जितनी भी स्थूल शक्तियां हैं, जैसे हम कहेंगे साइलेंस, साइंस की जो शक्ति है वो धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ रही है, और जितना वो सूक्ष्म होती जा रही है उतना ही शक्तिशाली हो रही है। विज्ञान के साधन भी देखो, जितना सूक्ष्म होते जा रहे हैं उतना ही वो शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो साइलेंस की शक्ति है वो मन की शक्ति है। बाबा साइंस और साइलेंस की बात करते हैं साथ साथ में, क्योंकि मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो साइलेंस पावर दिया गया था तुम्हें। तो हमारा मन जो है वो साइलेंस जब होता है तब हम कहेंगे कि हमारी मनसा पावरफुल होती है, और हम वो सेवा अन्य आत्माओं के प्रति कर पाते हैं, जिसे हम शुभ भावना शुभ कामना की सेवा कहते हैं। ये सूक्ष्म सेवा है। ऐसे हम मनसा वाचा कर्मणा तीन प्रकार से सेवा करते हैं ना? तो कर्मणा सेवा सबसे आसान है, क्योंकि कर्म करने का हमें बहुत अभ्यास है। तो बहुत सहज बिना सोचे भी जो कर्म हम करते रहते हैं उसके हम अभ्यस्त होते हैं और वो कर लेते हैं, इसलिए स्थूल सेवा करना सबके लिए इजी होता है। वाचा सेवा के लिए हमें थोड़ा अभ्यास करना होता है, उसके बाद हम वाचा सेवा भी कर सकते हैं। मनसा सेवा सहज प्रतीत होती है, लेकिन सहज है नहीं, क्योंकि जब तक मेरा मन साइलेंस में नहीं है, जब तक मेरा मन शांत नहीं है, मेरे मन में शुभ भावनाएं श्रेष्ठ भावनाएं नहीं है, मेरा मन निस्वार्थ नहीं है या देने की भावना नहीं है, तब तक मेरे वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक पहुंच नहीं सकते। पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकेंगे ना? नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हमारे प्रति स्नेह रखते हैं, हमारे प्रति सहयोग रखते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, उनके प्रति मेरी भावनाएं अच्छी होती हैं, नेचुरल अच्छी होती हैं। और ज्ञानी होने के बाद तो थोड़ा और हम विशेष अटेंशन रख लेते हैं, लेकिन जिसकी मेरे प्रति कोई हिसाब किताब है या कहीं ना कहीं उनसे हमारे संस्कार नहीं मिलते, या किसी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया या मेरा अपमान कर दिया जो भी हम कहें, तो फिर उसके प्रति मेरी भावनाएं श्रेष्ठ रहें, उसके प्रति मेरा मन शांत रहे, क्या वो आत्मा मेरे मन को शांति दे सकती है? दे सकती है, सोचिए। हाँ, उस सिचुएशन को आप एक बार सामने लाइए, क्योंकि ये तो हर दिन कोई ना कोई ऐसी आत्मा हमारे सामने आती है, चाहे आप घर में हैं, चाहे आप काम पर हैं, कोई ना कोई हिसाब किताब वाली आत्मा हर एक के जीवन में होती है। तो क्या उस आत्मा को देखने पर भी मेरा मन अशांत नहीं होता है, या उस समय भी क्या मैं उसे शुभ भावना और शांति के वाइब्रेशन दे सकती हूँ? तब हम कहेंगे मेरे मन में शांति की शक्ति है। ऐसी आत्माएं या ये समस्याएं हमारे जीवन में नहीं आएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। लास्ट तक भी ये पेपर सब चलते रहने हैं, तो मेरे को अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाते जाना है। माना विपरीत परिस्थितियों में भी या अशांति के वातावरण में भी मैं शांति दे सकूं, तब हम वो मनसा सेवा हम कर पाएंगे। जैसे हम कहेंगे कि एक 0 वॉट का बल्ब है, उसकी कितनी रोशनी होगी? बहुत कम, आप सिर्फ देख सकेंगे कमरे की चीजें। 100 वॉट का बल्ब है तो इतनी रोशनी होगी कि आप पढ़ भी सकेंगे। 1000 वॉट का बल्ब चल रहा है तो इतनी रोशनी है कि एक मैदान तक वो रोशन कर सकता है, या किसी को कोई रिकॉर्डिंग करनी है तो वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन एक लाइट हाउस है तो लाइट हाउस मीलों तक जो है वो रास्ता दिखाता है, अपनी रोशनी फैलाता है। तो मेरी मनसा पावर कितनी है? अगर मैंने साइलेंस की शक्ति जमा की है तो फिर मैं लाइट हाउस हूं। बाबा हमें क्या कहता है? लाइट हाउस माइट हाउस। भगवान की नजर हमारे प्रति सदा लाइट हाउस माइट हाउस की है। पर क्या सचमुच मेरी स्टेज वो लाइट हाउस वाली है जिसको आज बाबा ने मुरली में कहा सर्च लाइट? मुझ आत्मा की लाइट कहाँ तक पहुंचती है? सर्च लाइट होती है वो दूर तक पहुंचती है, और जो लाइट होती है वो बस एक सीमित स्थान तक होती है। तो मनसा पावरफुल है तो फिर एक स्थान पर रहते हुए भी मैं विश्व की किसी भी आत्मा की सेवा कर सकती हूँ। और यदि हम व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, यदि हम नेगेटिव संकल्पों में चले जाते हैं अभी भी, तो फिर वो लीकेज है, मन की शक्ति की लीकेज है। हमारी मनसा शक्ति उससे नष्ट होती है। से हम कहते हैं अगर नेगेटिव विचार चलते हैं मन में, नेगेटिव विचार किसको कहेंगे? सब जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। आप भी थोड़ा रूढ़ियान करिए, टाइम ऐसा है ना, ये तो थोड़ा शेयर करेंगे तो जिसको भी थोड़ा झपकी लग रही होगी। नेगेटिव थॉट्स हम किसको कहते हैं? बोलिए, कि जिसमें किसी की भलाई ना हो। अच्छा, स्वार्थ वाले जो विचार होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और ये तो बदल ही नहीं सकता है। अच्छा, बिना मकसद के वो तो व्यर्थ हो गए। व्यर्थ माना जिसका कोई आलतू फालतू विचार, इसके उसके, और हाँ कोई बोलो नेगेटिव थॉट्स बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा सुना रहे हो, लेकिन सही बात अभी तक नहीं पहुंची है। मनोबल को गिराने वाले, दुख देने लेने वाले। अच्छा, दूसरों के प्रति व्यर्थ। जितने भी विकार हैं, पांचों विकारों के वश जो विचार मन में चलते हैं वो नेगेटिव थॉट्स कहलाते हैं। विशियस थॉट्स हम इन्हें कहते हैं ना, विष पैदा करने वाले। और जैसे कहते हैं विश्व की थोड़ी मात्रा ही काफी होती है, ज्यादा मात्रा नहीं चाहिए, थोड़ी मात्रा में ही वो समाप्त करता है कुछ भी चीज को, ऐसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना, यानी विकार प्लस उसके अंश वंश हम ये कहेंगे, इसके वश होकर के मन जब भी सोचता है तब हमारे मन की शक्ति कई गुना नष्ट होती है, यानी लीकेज बड़ी है। और कभी ना कभी पूरे दिन भर में मन किसी ना किसी विकार के वश हो ही जाता है। आज भी पवित्रता के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई तो मानो हम उस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन तो हम सब करते हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमारा फाउंडेशन है, तो वो वाला काम विकार नहीं आता है मन में। लेकिन लगाव झुकाव वाला जो है वो अंश वंश उसका, वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता है। तो किसी भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा स्नेह, किसी भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा झुकाव लगाव झुकाव हम किसको कहेंगे? तो उसके विचार मन में ज्यादा चलें, एक बाप दूसरा ना कोई। आज बहुत अच्छी मुरली थी बाबा की, इसी विषय पर थी, ना, उसकी बजाय कोई ना कोई मनुष्य आत्मा हमारा थोड़ा बहुत आधार रहती है। तो फिर जो योग में पावर भरनी चाहिए, जब हम बाबा की याद में बैठेंगे ना, तो संपूर्ण एकाग्रता वाला योग कभी नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो आत्मा आपकी बुद्धि को खींच लेती है, उसकी निशानी ही है। किसी के प्रति विशेष लगाव है तो वो निशानी ही है कि योग के समय वो आत्मा जरूर आपकी बुद्धि का योग खींचेगी। बाबा से आपका पूरा योग नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा के साथ हिसाब किताब है। दो तरह के हिसाब किताब होते हैं, एक सुलटा होता है, एक उल्टा होता है। सुलटा माना ये एक्स्ट्रा स्नेह वाला हिसाब किताब हो गया, और एक होता है घृणा वाला। किसी से आपको नफरत माना, उसके दिल पसंद कर्म नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आते हैं वो जो करते हैं, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करते हैं। इनको इतनी बार समझा दिया फिर भी ये वही गलती करते हैं, तो क्या मन में भाव आता है उनके प्रति? थोड़ा नफरत है ना। तो वो आत्मा भी बुद्धि को खींचती है। जब आप योग में बैठेंगे तो दो तरह की आत्माएं आपकी बुद्धि को खींचती हैं। तो मन में जो साइलेंस पावर बाबा से अनुभव होनी चाहिए, नहीं होती। मैं योग में बैठी हूं फिर भी मेरा मन अशांत है, फिर भी शांति नहीं मिल रही है, क्यों होता है ऐसे? क्यों नहीं मिल रही है? लीकेज हो रही है ना, जिसको बाबा नहीं कहता है, बाल्टी में मुझे पानी भरना है लेकिन होल है उसमें, तो कितना भी मैं भर लूं क्या होने वाला है? सारा खाली होने वाला है। तो बहुत सालों से हम योग लगा रहे हैं, बाबा से शक्ति मिलती भी है, भरती भी है, लेकिन जैसे ही नेगेटिव थॉट्स में मन गया, अब ये तो काम विकार की बात हुई, क्रोध को लेकर के भी मेरा मन कितना अशांत होता है। क्रोध तो सबसे बड़ा विकार है जो मन को अशांत करता है। हाँ, दो मिनट भी आपने गुस्सा कर लिया, घंटों तक आपके मन में वो नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स चलते रहते हैं, और सारे दिन में कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ करेगा ही। जब मुझे गुस्सा आएगा, मेरी बात नहीं मानेगा या मुझे झूठ बोलेगा। हाँ, कोई भी बच्चे हैं, अब कहना ही नहीं मान रहे तो माताएं क्या करेंगी? आखिर तो गुस्सा तो करना ही पड़ेगा ना, जरूरी है, क्या बोलेंगे? बोलिए, जो समझते हैं करना ही पड़ेगा, बिना गुस्सा किए तो बच्चों से काम करवा ही नहीं सकते, या बच्चा कहना मानेंगे ही नहीं। तो जो अभी तक भी करती हैं, जो अब बाबा के बच्चे बन चुके लेकिन अभी तक भी बच्चों पर गुस्सा करना पड़ता है, वो हाथ उठाओ। देखो उठा रहे हैं अभी भी, सोच सोच के उठा रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ ना कुछ सारे दिन में हो ही जाता है, फिर गुस्सा करके क्या बच्चा कहना मान लेता है तो मन शांत हो जाता है या शांत हो जाता है? हाँ, फिर सोचते हैं क्यों बोला, क्यों ऐसे बोला, थोड़ा प्रेम से भी बोल लेते। कोई बात नहीं, एक बार में नहीं किया, दूसरी बार समझा लेते, फिर बाद में याद आता है। कर्म करने के बाद, बाबा कहता है कर्म करने के पहले सोचो। तो कोई भी विकार का असर आ गया मेरे मन पर, अहंकार, मैंपन आ गया, मैंपन आया माना मैं ही राइट हूँ, मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो राइट है, इनको मेरी बात माननी चाहिए, दूसरे की बात तो मुझे कभी राइट लगती नहीं है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अहंकार का मतलब क्या होता है? मैं ही श्रेष्ठ हूँ, है ना, तो मुझे मानना चाहिए। तो कहां भी कोई भी विकार घुसा मन में, तो मन अशांत होना ही है। अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है, और इसीलिए बाबा कहता है देही अभिमानी बनो। देह अभिमान से देही अभिमानी स्थिति में लाने का कारण, देह अभिमान विकारों की जड़ है, और आत्माभिमान, आत्माभिमान गुणों की सुगंध है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं, तब हमें आत्मा के गुणों का अनुभव नेचुरल होता है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। ये केवल चिंतन की बात नहीं है, ये स्वरूप बनने की बात है। और जब हम इसका स्वरूप हैं, तब फिर अगर कोई विपरीत स्थिति मेरे सामने आएगी तो भी हम उसको वो दे रहे होंगे, जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला कि अगर मेरा मन पवित्र है, संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्रता, तो अगर मेरा मन पवित्र है तो पवित्रता सुख शांति की जननी है, और जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आएंगी उनको वो सुख शांति आपसे अनुभव होगी जब आपका मन उस निर्विकारी स्थिति में है तब, और नहीं तो कभी मन शांत होगा कभी उलझन में होगा, कभी मन सुखी होगा कभी मन दुखी होगा। और फिर जब हम ऐसा महसूस करते हैं ना, तो हम वर्णन भी करते हैं दूसरों को, अगर मेरा मन उलझन में है या मैंने किसी की कोई बात देखी, जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि मेरे मन में अगर किसी की कोई कमी या किसी की ऐसी बात मेरे चित्त पर आ गई, कोई कमजोरी की बात, वो भी पवित्रता नहीं है। पवित्रता को बहुत गहराई से बाबा ने स्पष्ट किया, अगर वो बात मेरे मन में आ गई और मेरे मन में चल रही है वो, तो हम उसे वर्णन किए बिना नहीं रहते, जिसको हम पर चिंतन कहते हैं। पहले पर दर्शन किया, दूसरों के पार्ट को देखा, फिर उन्हें जज किया, इनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, स्व परिवर्तन की बजाय दूसरा परिवर्तन हो जाए, स्व दर्शन की बजाय पर दर्शन, ऐसे कहेंगे। फिर दूसरों से वो कथा करते हैं, वो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, और ये सबसे प्रिय कथाएं हैं हमारे भारत की ना, जैसे कहते हैं रामायण की कथा, या जितना आनंद इन कथाओं में आता है और कोई कथा में, अभी भी वो कन्वर्स तो है ना, है कि नहीं, है ना। तो कहते हैं कई बार हम जब वो ये ऐसी बातें करते हैं, ये कथाएं दूसरों की करते हैं, तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। एक कहानी सुनाते हैं आपको, थोड़ी हंसी वाली है ताकि नींद खुल जाए आपकी। नहीं नहीं सोए नहीं है लेकिन। तो एक बार एक पंडित जी थे, वो किसी दूसरे गांव में कथा करने के लिए जाना था उनको, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि रास्ते का भोजन दे देना, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए। तो रास्ते का भोजन लिया उन्होंने, और किसी जगह को देख करके वहां खाना खोल के बैठे खाने के लिए। तो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो पेड़ पर एक पक्षी था, जैसे ही उन्होंने अपना खाना लगाया उतने में ही पक्षी ने बीट कर दी, तो वो खाना जो है अशुद्ध हो गया, ब्राह्मण थे वो, तो उन्होंने खाया नहीं। फिर मन खराब हो गया, तो सोचा आज नहीं जाता हूं दूसरे गांव, अब कभी जाऊंगा। घर आ गए वापस, तो पत्नी ने सोचा कि क्यों इतना जल्दी वापस आ गए, तो पूछते हैं ना जैसे भी, क्यों आ गए इतना जल्दी वापस, आपको तो दूसरे गांव जाना था, क्या कथा करने नहीं गए। तो वो नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था मेरी पत्नी का स्वभाव है, अगर एक बार बोल दिया माना पूरे गांव में ये बात फैल जाएगी, तो इधर उधर टालते रहे, पर वो पीछे ही पड़ी रही। तो आखिर उनको बताना पड़ा, और उन्होंने कहा कि ऐसा था, मैं जब खाना खाने बैठा तो खाने पर पक्षी ने बीट कर दी, इसलिए मेरा मन खराब हो गया, मैं वापस आ गया। तो किसी को बताना मत, है ना। तो उसने कहा मैं क्यों बताऊंगी, ठीक है। अब वो तो उसका स्वभाव था ना, तो दूसरे दिन वो कुएं पर पानी भरने गई, तो वहां कुएं पर गांव की चार औरतें इकट्ठी होती ही हैं, उसको याद ही नहीं रहा, और उसने बात बात में सारी बात कह दी। तो जो सुनने वाले होते ना, वो सभी सारी बात नहीं सुनते, आधा ध्यान उनका कहीं और होता है, आधा कहीं और होता है। तो एक ने क्या सुना, पक्षी की बीट गिर गई की बजाय पक्षी गिर गया। तो उसने जब चार लोगों से बाद में बात की, तो उसने कहा पंडित जी के खाने में पक्षी गिर गया, तो बात फैली पक्षी गिर गया। फिर और जब आगे बात हुई, तो किसी ने सुना कि पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर जो आगे बात जब चार लोग और चार को सुनाते हैं, ऐसे ही होता है जब हम किसी की बात किसी को करते हैं, तो अपने अपने भाव मिक्स करते हैं, जो सुना आधा सुना नहीं सुना, तो कैसे बात बदलती जाती है। तो लास्ट में जिसने सुना, उसने ऐसे सुना कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब पक्षी निकलते हैं तो चमत्कार वाली बात हो गई, तो ये पंचायत में पहुंची, तो पंचायत ने सोचा हमारे गांव में इतने चमत्कारी पंडित जी रहते हैं और हमें आज तक मालूम नहीं, जरूर उनका चमत्कार दिखाना चाहिए। तो बुलाया गया, तो जैसे ही पंचायत से बुलावा आया तो वो बहुत डर गए, क्योंकि पंचायत से बुलावा आना माना कुछ ऐसा हो गया है, गलत काम जो पंचायत बुला रही है। जब पहुंचे पंचायत और पता चला, तो पता चला कि चमत्कार दिखाने के लिए बुलाया है। और क्या चमत्कार दिखाना है? मुंह से पक्षी निकाल कर दिखाने। तो सोचने लगे ऐसा कैसे हुआ, ये किसने बोला मैं मुंह से पक्षी निकालता हूँ। जब दिमाग लगाया तो समझ में आया कि ये सारी पत्नी की करामात है। अब सोचा फैल तो गई है, अब बचे कैसे इससे। तो जब बारी आई और उनको कहा गया कि आपको चमत्कार दिखाना है, तो पंडित जी ने बोला ठीक है मैं चमत्कार दिखाता हूँ, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो पक्षी बन जाएगा। तो जितने भी थे वो सब चले गए उठ उठ के, क्योंकि किसी को पक्षी नहीं बनना था। आप देखिए ना कितने अर्थ के अनर्थ हुए। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, जब हम किसी की बात इधर की उधर, अब मेरे मन में इतना प्रेशर भर जाएगा तो कहीं तो हम रिलीज करेंगे उसको, नहीं करेंगे। और जब हम उसको रिलीज करते हैं तब हमारे भाव जो हम उसमें मिक्स करते हैं, तो हम खुद तो अशांत हैं, हम दूसरों को भी अशांति दे रहे हैं। जबकि हमें बाबा ने कहा है हम शांति के अवतार हैं, हम शांति देवा हैं, हम शांति के दूत हैं। तो फिर हमें अपने ऊपर अटेंशन देकर के ये पुरुषार्थ विशेष करना होगा, क्योंकि ये हमारे पुराने संस्कार हैं जो हमने द्वापर युग से अपने साथ लाए हैं। अगर वही संस्कार मेरे अभी तक चल रहे हैं, शांति मेरी सिर्फ योग तक सीमित है, कर्मों तक नहीं आई। मैं योग में बैठी आधा घंटा, बहुत अच्छा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा के पास शांति धाम में शांति का अनुभव किया, बस वहीं खत्म। उसके बाद जैसे ही कर्म में आए फिर वही के वही, वही संस्कार जो चलते आ रहे हैं। कौन ऐसा अनुभव करते हैं कि सचमुच सुबह से लेकर रात तक जैसा हमें शांत स्वरूप होना चाहिए बाबा के बच्चों को, वैसा ही मन भी हमारा शांत रहता है और दूसरे भी हमसे शांति का अनुभव करते हैं। इतना हम शांति की शक्ति वाले बन चुके हैं। कोई भाई बहन है ऐसे जो हाथ उठाएंगे? चलो एक तो है, उनके लिए ताली बजाइए। लेकिन हम सबका लक्ष्य यही है, हम सबको ही इतना शांति की शक्ति का स्वरूप बनना है। तो कैसे हम मन की शक्ति को बढ़ाएं? इन विचारों से अपने मन को निकालना है, इन विकारों से अपने मन को निकालना है, यहाँ तक कि पास्ट का चिंतन जो हमारे मन में चलता है ना, उस पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं। जो व्यर्थ विचार होते हैं नेगेटिव पर, तो चलो फिर भी मेरा कई बार अटेंशन जाता है कि ये मैं बुरा सोच रही हूँ, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जो वेस्ट थॉट चलते हैं छोटी मोटी बातों को लेकर के, वो तो सब कॉन्शियसली चलते हैं, हमारा ध्यान भी नहीं चाहता कि हमें ये सब सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। मेरे थॉट प्रोसेसेस पर इतना अटेंशन, ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, मोटा पुरुषार्थ नहीं है, जिसको हम तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। जो मोटा पुरुषार्थ करते हैं मोटी मोटी बातों का, मैंने ऐसे बोल नहीं बोले, अच्छा आज सारा दिन मैंने बहुत मीठा बोला है, किसी को कड़वा वचन नहीं कहा, या मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। लेकिन मन पर अटेंशन, मेरे मन में ऐसे विचार चले जो मेरे को अशांत कर रहे हैं और दूसरों को भी अशांत कर रहे हैं। तो उसमें कई बार पास्ट की बातें आ जाती हैं, पास्ट में किसने क्या किया, आपने उस इंसान को देख लिया, देखते ही आपकी पूरी रील घूमनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही वो पूरी रील रिमाइंड हुई, क्या होने वाला है, आप बहुत खुश थे, बहुत मजे में थे, और जैसे ही उसको देख लिया क्या हो गया, जैसे ही वो सारी बातें याद आई, पूरा सुख खत्म, पूरी शांति खत्म। उस पर कंट्रोल कर सकते हैं? ये कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बाबा कहता है मन पर चाहिए कि मन को जिस स्थिति में ले जाए, जैसे भी आज बिंदु की बात बाबा ने कही, तीन बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप। बिंदु लगाना माना क्या? क्वेश्चन में नहीं जाना, लेकिन फुल स्टॉप लग जाए तो क्या मेरा फुल स्टॉप लग जाता है कि अब मुझे ये सोचने की जरूरत नहीं, ये तो पास्ट की बात थी, मुझे क्यों सोचना है, और बस उसके बाद सोच खत्म। ऐसा हो सकता है? अगर नहीं होता है तो मुझे अभ्यास करने की जरूरत है। बाबा कहता है ये बहुत काल का अभ्यास अगर आपका अभी से होगा तब अंत समय में आप पास हो सकेंगे। अंत समय में तो बहुत पेपर आने वाले हैं, तो कुछ भी नहीं है। जो अंत की बात बाबा कहता है, पास विद ऑनर और पास होने वाली आत्माओं के सामने, तो उस समय तो हमारी शांति की शक्ति या मनसा शक्ति कितनी श्रेष्ठ और शक्तिशाली होनी चाहिए। तब वो उस एक सेकंड के पेपर में जो हमारी बुद्धि को चारों तरफ से खींचने वाले होंगे, बाबा कहता है प्रकृति भी खींचने वाली होगी, व्यक्ति भी खींचने वाले होंगे, क्योंकि व्यक्तियों के साथ सारे हिसाब किताब भी खत्म होने का टाइम वो होगा। फिर जो आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं, जो इवल सोल्स हैं, उनके वाइब्रेशंस, वो तमोगुणी वाइब्रेशंस होंगे, वो वाइब्रेशंस भी असर डाल देंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं टेंशन में नहीं हूं पर कोई दूसरा टेंशन में है, तो उसका टेंशन का असर मेरे ऊपर आ जाता है, वो दुखी है तो उसके दुख का असर मेरे ऊपर आ जाता है। तो बाबा कहता है दूसरों को तो सेफ रखना ही रखना है, मतलब उनको तो सहयोग देना ही देना है, लेकिन मैं भी सेफ रहूं। ऐसे नहीं कि मैं आग बुझाने जा रही हूं तो मैं खुद ही आग में फंस जाऊं। बचाने वाला क्या करता है? पहले खुद को सेफ करता है। अगर हम फायर ब्रिगेड यूज कर रहे हैं तो फायर ब्रिगेड पहले पानी की, हाँ, तो ऐसे ही मैं सेफ रहूं, वो शक्ति मेरे अंदर हो, और तब हम इन सबको भी परिवर्तन कर सकें। तब हम कहेंगे कि हाँ, हमारी शांति की शक्ति की उस सीमा तक हम पहुंचे हैं, और उसके लिए हमें एकांत का अभ्यास, मन को देखने के लिए एकांत चाहिए। एकांत माना मन का साइलेंस तो है ही है, लेकिन वातावरण का भी एकांत हो, और उस एकांत में बैठ करके मैं अपने मन को निरीक्षण करूं कि मेरे मन के विचार बहुत जल्दी किससे प्रभावित हो जाते हैं, किस दिशा में बहुत जल्दी चले जाते हैं, और अगर जाते हैं तो अब मुझे कौन सी ज्ञान की बातें, ज्ञान के पॉइंट्स यूज करके मन को हमें ठीक करना है। जैसे बाबा कहता है संगम युग कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण है। अगर कोई परिस्थिति मेरे मन को विचलित कर रही है तो मैं सोचती हूँ इसमें भी मेरा भला है, इसमें भी मेरा कल्याण है। वो कल्याण का बिंदु हम लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते, एक होता है जानना। मैंने सिर्फ जान लिया कि ड्रामा बिंदु, ड्रामा का बिंदु लगा दो, ड्रामा कल्याणकारी है। आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ये तीन बिंदु लगाने हैं, लेकिन सही समय पर क्या मेरा बिंदु लगता है, या बिंदु की बजाय क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मैं सोच तो रही हूँ लेकिन डिस्टर्ब भी हो रही हूँ। ड्रामा कल्याणकारी है, सोच भी रही हूँ और साथ साथ डिस्टर्ब भी हो रही हूँ। ज्यादातर ऐसे ही होता है, तो इसका मतलब मैंने उस पॉइंट को अभी अपना नहीं बनाया, वो पॉइंट अभी तक मेरी शक्ति स्वरूप नहीं बनी है। तो हमें उसका रोज अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हम कहेंगे सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है तो हर दिन वो शस्त्र चलाता है, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वो शस्त्र चलाता नहीं है, क्योंकि अगर वो एक दिन भी नहीं चलाएगा तो समय पर जब दुश्मन पर निशाना साधना होगा तो चुप जाएगा, उसका निशाने में इतनी परफेक्शन नहीं होगी। इसीलिए बाबा कहता है विचार सागर मंथन करो। तो रोज अगर मैंने विचार सागर मंथन किया है और रोज उसका अनुभव किया है तो फिर समय पर वो तीर लगेगा। अगर अभ्यास नहीं है तो वो तीर नहीं लगेगा। आत्मिक शक्ति मैं आत्मा हूँ, ये आत्मिक शक्ति जो है बहुत विकारों को जीतने में मदद करती है, लेकिन मुझे आत्मा का अभ्यास ही नहीं है, सिर्फ योग तक। मैंने कहा जैसे ज्यादातर हमारा ज्ञान योग तक होता है, हम बैठे बाबा की याद में, उस समय मैंने याद किया थोड़ा बहुत जो बाबा ने हमें समझाया हुआ है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी संतान हूँ, स्वर्ग में जाने वाली हूँ, देवता बनने वाली हूँ, और उसके बाद खत्म। बाद में वैसे के वैसे है। तो फिर कोई भी विकार की परीक्षा अगर मेरे जीवन में आई तो मैं फेल ही होने वाली हूँ, पास नहीं होने वाली। अचानक क्रोध का पेपर आ गया तो मुझे अपना शांत स्वरूप याद ही नहीं है। जब मेरी आत्मिक स्थिति नहीं है तो मुझे शांत स्वरूप याद है? नहीं होगा तो मैं क्या करने वाली हूँ? गुस्से का गुस्सा ही करने वाली हूँ। तो यदि हमने उसे जीत लिया है, इसका मतलब मेरे शांत स्वरूप की स्थिति मैंने बनाई है। तो इसीलिए विचार सागर मंथन माना पूरा दिन का मुझे अपनी डेली डायरी बनानी है, पूरे दिन की मुझे अपनी दिनचर्या निश्चित करनी है कि इस घंटे से इस घंटे तक मैं क्या अभ्यास करने वाली हूँ, क्योंकि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में भी जो महान आत्माएं होती है ना, वो अपनी उनका एक एक मिनट का प्रोग्राम निश्चित होता है। कोई भी VIP भी हमारे कैंपस में आता है ना, तो उसका मिनट टू मिनट प्रोग्राम बना होता है, इस मिनट कहाँ होगा और अगले घंटे में वो कहाँ होगा। तो हमें भी अपने मन का प्रोग्राम निश्चित करना है और मन को उस प्रोग्राम प्रमाण चलाना है, और फिर देखना है कि कितना मैं मन को उन विचारों में स्थित कर पाती हूँ, एकाग्रता का अभ्यास मेरा कितना है। यही एकाग्रता है। और एकाग्रता माना जिस समय जहां मैं अपने मन को स्थित करना चाहूं, अगर मैं सोचती हूं मैं इस घंटे में मास्टर सर्वशक्तिमान या मास्टर शांति के सागर स्थिति का अभ्यास और अनुभव करने वाली हूं, तो मेरा मन उसमें स्थित हो पाए, चाहे वो मैं परम धाम में मन को स्थित करना चाहूं, चाहे मैं अव्यक्त स्थिति में स्थित करना चाहूं, तो हो जाए, उसको हम एकाग्रता कहेंगे। इसको बाबा रूहानी ड्रिल भी कहता है। चाहे तो इस शरीर का आधार लिया, कर्म किया, चाहे तो तुरंत डिटैच होकर पहुंच गए सूक्ष्म वतन में, अव्यक्त वतन में, नहीं तो पहुंच गए परम धाम में। तो एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ, जैसे हम कहेंगे कमरे में अंधेरा है, स्विच ऑन किया प्रकाश हो गया, स्मृति का स्विच ऑन किया और शांति हो गई, हो सकता है विस्मृति हुई तो अशांति हो गई, और जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन हुआ मैं कौन हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, और मन बिल्कुल उस स्थिति में आ जाए, ऐसा अभ्यास तो हम कहेंगे कि मेरा मन एकाग्र हो जाता है। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा एकाग्रता माना बिंदु, कहा तो बिंदु में मन टिक जाए, मन उस स्वरूप में स्थित हो जाए। और उसके साथ साथ शांति के जो बाबा हमें प्रयोग बताता है, क्या प्रयोग हमें करने हैं, तो बाबा कहते हैं एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व की आत्माओं को हमें सकाश देना है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा आवश्यकता विश्व में शांति की है, बहुत आत्माएं दुखी और अशांत हैं। तो यदि मैं मास्टर शांति का सागर की स्थिति का अनुभव करती हूँ, तो जो हम वाइब्रेशन फैलाते हैं, वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बनता है, मेरी वृत्ति में अगर शांति है तभी मैं शांति का वायुमंडल बना सकती हूँ, और अगर मैं लाइट हाउस हूँ तब मैं पूरे विश्व में वो वाइब्रेशन फैला सकती हूँ, नहीं तो मेरे कमरे में भी मुश्किल से। तो समझ गए ना क्या बनना है, बल्ब नहीं बनना है, क्या बनना है, लाइट हाउस। और लाइट हाउस कब बनेंगे, जब मनसा पावर को बढ़ाएंगे, वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स से मन को मुक्त करेंगे, तो वो लाइट हाउस बनकर मुझे पूरे विश्व की आत्माओं को देना है, लेकिन पहले मुझे ये भी अटेंशन रखना है कि जो मेरी साथी आत्माएं हैं, जो मेरे परिवार के हैं, चाहे हम जहां काम कर रहे हैं वहां के हैं, क्या वो मेरे से शांति का अनुभव करते हैं। कईयों को रियली लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि भाई जी या बहन जी, हम जब भी आपसे मिलते हैं तो हमें शांति की अनुभूति होती है, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होती है, हमें सुख मिलता है, और हम सोचते हैं आप हमें कुछ सुनाइए, हाँ मन शांत हो जाएगा, कहते होंगे किसी किसी को, है ना? मतलब क्या करना है बोलिए, कोई टेस्ट लेने वाली आ जाए तो आप बताइए क्या करेंगे, हाँ सुन तो चुके हैं, वो मुझे सिखाने आई है, मुझे अनुभवी बनाने आई है और मुझे आगे बढ़ाने वाली है। ज्ञान तो सब हम अच्छे से जानते भी हैं और अच्छे से सुना भी लेते हैं, पर सचमुच वो टाइम मुझे याद आ जाए कि ये मुझे अनुभव, ये बड़ा मुश्किल है ना, सबसे ज्यादा मुश्किल बात यही होती है। तो एक तो हमें ये करना है और दूसरा, शांति की शक्ति से बाबा कहते हैं हम संस्कारों को भी बदल सकते हैं। जो मेरे अपने इतने पुराने संस्कार हैं जो परिवर्तन नहीं होते हैं, उन संस्कारों को भी और दूसरी आत्माओं के संस्कारों को भी हम बदल सकते हैं। आजकल शिक्षा देने का समय नहीं है ये बाबा कहता है, अगर आप किसी को सिखाने जाएंगे ना तो वो आपको आपसे ज्यादा सिखा देंगे, आपको क्या करना चाहिए वो ज्यादा समझा देंगे, लेकिन अगर मेरे नैनों में उनके प्रति रहम की भावना है, स्नेह की भावना है, शुभ भावना है, तो वो ज्यादा काम करती है, जिसको वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन बाबा कहता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि विकारों की आग में जलती हुई आत्मा को भी आप शांत बना सकते हो जब आपकी मनसा इतनी पावरफुल है। जो काम हमारे बोल नहीं कर सकते वो काम हमारा स्वरूप कर सकता है। जैसे हम वो कहानी सुनते हैं ना डाकू अंगुली माल की, सुनी होगी आपने, कि वो पूरा इतना लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला गले में पहना के गले में पहनता था, इतना खूंखार डाकू था वो। तो महात्मा बुद्ध एक बार उस नगर में गए तो राजा बहुत दुखी था, उस डाकू से पकड़ नहीं पा रहे थे उसको, तो महात्मा बुद्ध से मिलने गए तो उन्होंने उनको यही रिक्वेस्ट की कि आप हमारे नगर में आए हैं लेकिन इस नगर में अंगुली माल का बहुत आतंक है, अगर आप उसे किसी तरह समाप्त कर पाए तो इससे अधिक आशीर्वाद आपका हमारे प्रति नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, मैं कल ही उससे मिलूंगा। तो जैसे ही लोगों ने सुना कि ये उससे मिलने जा रहे, उन्होंने कहा वो तो इनको भी नहीं छोड़ेगा, इनकी उंगली की माला पहन लेगा गले में। तो लोगों ने, उनके शिष्यों ने उनको बहुत समझाना शुरू किया, आप क्या कर रहे हैं, आप किसके पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता है, और वो गए उस जंगल में जहां वो डाकू रहता था। और जब उस रास्ते पर पहुंचे तो वास्तव में उसने सोचा था मैं 1000 उंगलियों की माला पहनने के बाद देवी की पूजा करूंगा। तो उस दिन उसकी 999 उंगलियां हो चुकी थी, एक लास्ट ही बची थी। तो महात्मा बुद्ध सामने आ गए तो पकड़ लिया उसने, मतलब गया उनके सामने और कंधे पर पीछे से जोर से हाथ रखा, तो वो रुक गए। और जैसे ही वो मुड़कर सामने आया, उसने कहा देखूं तो सही शक्ल कौन है। तब वो तो महात्मा बुद्ध तो इतना शांत चेहरा और बिल्कुल रहम करुणामय उनका सारा स्वरूप था, और इतना प्यार था उनके नेत्रों में उसके प्रति। तो वो डाकू तो सहम गया, क्योंकि आज तक उसने किसी की आंखों में अपने लिए प्यार देखा ही नहीं था, आज तक सबके दिलों में उसके प्रति नफरत ही थी। और जैसे ही उसको लोग सामने देखते थे वो डर से यूं कांपने लगते थे, कोई इंसान इतना निर्भय होकर खड़ा है और मुझे इतना प्रेम से देख रहा है, ऐसा तो जिंदगी में उसने, तो वो तो एकदम मतलब बदल गया कि ये कौन है, कौन मुझे इतने प्रेम से देख सकता है। तो पूछा उसने, कौन है आप, आपको डर नहीं लग रहा है मुझसे, तो लोग बहुत डरते हैं। तो उसने कहा कि आप मेरे अपने हो और मुझे आपसे क्यों भय लगेगा। तो उसको समझ में आया कि कहीं ये बुद्ध तो नहीं है, क्योंकि सुना तो उसने भी था। तो उसने ही आगे से पूछा कि आप बुद्ध हैं? तो उन्होंने कहा तुमने सही पहचाना। तो जैसे ही उसको पता चल गया कि हाँ यही बुद्ध हैं, तुरंत उसने अपना अब झुक गया वो उनके चरणों में और कहा कि आप स्वयं चलकर मुझ तक आए हैं, तो ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य है और अब मैं आपके चरणों में हूँ, आप मुझे जैसा आदेश देंगे मैं वही करूंगा। जिस काम को वो राजा राज्य का राजा लगा हुआ है और वो नहीं कर पाया, उस काम को वो महात्मा बुद्ध ने कितने समय में कर दिया? कोई शिक्षा देकर नहीं बदला, उनके स्वरूप ने, उनके सिर्फ स्वरूप ने इतने खूंखार डाकू को बदल दिया। तो इसीलिए बाबा कहता है कैसी भी आत्मा हो उसके प्रति क्या रखो आप, सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना हमने रखी तो हमारी वो वृत्ति काम करती है। मानो कोई हिसाब किताब है भी, कई बार ऐसे होता है बहुत शुभ भावना रख ली फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो हिसाब किताब है वो कटेंगे तब होगा ना, लेकिन कट रहे हैं। आप शुभ भावना रख रहे हो तो पुराना क्या हो रहा है, कर्ज खत्म हो रहा है। अगर आपने शुभ भावना की बजाय दुर्भावना रख ली, माना जो उसकी भावना है वही मैंने रख ली, तो हमने उसको 100 गुना बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हमें तो अभी हिसाब किताब खत्म करने हैं ना सारे अपने। तो ये हमें अपना परिवर्तन करना है और बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए जो बाबा हमें कहता है, तब हमें सचमुच लोग शांति का अवतार मानेंगे और हम वो सभी आत्माओं को शांति की अनुभूति करा पाएंगे। और मनसा सेवा से परिवर्तन जो बाबा कहता है ये अंतिम समय की सेवा है। मनसा सेवा अंत समय में कुछ काम नहीं करेगा, कोई वाणी की सेवा या स्थूल साधनों द्वारा सेवा, लेकिन मनसा सेवा यानी वायरलेस सेट, एक स्थान पर बैठे हैं पावरफुल संकल्प से दूसरी आत्मा को आपने कुछ थॉट भेजा उसको टच हो जाएगा। इस लेवल तक हम अभी है ही नहीं, कोई भी नहीं है। कोई कोई फील करते हैं कि जब हम कोई शुद्ध संकल्प करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही हो जाता है तुरंत। अभी भी ये सिद्धि कुछ जो बहुत श्रेष्ठ योगी आत्माएं हैं वो अनुभव करती हैं, लेकिन फिर भी जो बाबा चाहता है, जिस स्तर की सेवा बाबा अभी चाहता है मनसा सेवा, अभी तक क्योंकि हमारी मनसा उतनी पावरफुल नहीं बनी है तो अभी हम उतनी पावरफुल मनसा सेवा नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें अपनी वो स्थिति को बनाना है। तो जितना हम अटेंशन देंगे सारा दिन जो मैंने बताया, अपना टाइम टेबल बनाकर अपने मन बुद्धि को उस अनुसार चलाएंगे, बुद्धि को ज्ञान के चिंतन में बिजी कर रखेंगे, है ना, पर चिंतन में या इधर उधर की बातों में, नेगेटिव बातों से निकालकर, निकालना आना चाहिए, मन जाता है जरूर लेकिन उनसे मन को हमें निकालना आना चाहिए, उनसे निकाल करके कैसे हम ज्ञान की चिंतन का स्वरूप बने। जब ये हमें शक्ति आ जाएगी तो सहज ही हम जो ये सिद्धियां महसूस करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। ठीक है, ओम शांति।
बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सविता बहन जी, बाबा ने जो बताया और आपने कितने अच्छी तरह से हुए रिमाइंड कराया कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए और बहुत लंबे समय की कमाई भी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा दुआओं की कमाई अर्जित कर लेंगे, जितना ज्यादा श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की कमाई अर्जित कर लेंगे तो सारे कर्मों के हिसाब किताब सेटल करना ईजी हो जाएगा और फिर शांति और मनसा शक्ति से सारी दुनिया का कल्याण करने के सिवा कोई काम रहेगा ही नहीं। अभी तो बहुत काम है ना, कोई विघ्न आता है उसको भगाते हैं, किसी से बनती नहीं है उसको ठीक करते हैं, कोई असंतुष्ट है उसको संतुष्ट करते हैं, बहुत सारे काम है और उसके अलावा स्थूल काम भी। तो इसीलिए दीदी ने जो तरीका बताया, सहज भाव से मनसा फ्री हो जाएगी व्यर्थ से, तो फिर पालना करना, सबकी पालना करना, राज्य सत्ता अधिकारी बनना इजी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।